हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 9। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कृपा की आवश्यकता है। 2. हृदय की संपूर्ण मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे ताकि गुरु और गौरंगा की कृपा को प्राप्त कर सके और जो हम अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वीतं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। शास्त्रों में इस संसार को महासागर कहा गया है। जैसे शास्त्र कहता है संसार सागर गुई का, यह संसार गुई मतलब बहुत गहरा सागर है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सागर में तो केवल पानी ही पानी होता है, अब संसार को अगर सागर कहा गया है तो उसमें पानी कहाँ है ना? थल है ना, जल तो नहीं है, हम वॉक करते हैं हर जगह है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे समुद्र है, पर ज्यादातर संसार तो धरती है, तो फिर उसको सागर क्यों कहा गया? तो उसमें पानी नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, वैसे इस संसार सागर में दुख ही दुख है। यानी ये पानी का सागर नहीं है, ये दुखों का सागर है। जैसे इसी भगवान श्री कृष्ण इस संसार के लिए कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर केवल दुख ही दुख है। कब दुख कब आता है, कितने टाइम के बाद आता है, वो शास्त्र कहता है पदम पदम यत् विपदा। हर एक कदम पर आपको पद कहते हैं पांव, एक कदम जैसे हम एक स्टेप उठाते ना, बोले एक एक पद पे यत् विपदा, यानी कि एक एक कदम पे आपको एक नई विपदा का सामना करना पड़ेगा, एक नए दुख को फेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यह संसार बनाया ही आपको दुख देने के लिए। अब आप कहोगे कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, भगवान ने हमें दुख देने के लिए संसार क्यों बना, क्योंकि हम सब अपराधी हैं। वास्तव में भक्तों यह संसार जेल है, हम सब अपराधी हैं। हमने अपने बनाने वाले मालिक के साथ विद्रोह किया, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए इस संसार में भेजे गए और यह संसार जेल है। अब जेल में किसी को है ना कंफर्ट लाइफ थोड़ी ना दी जाती है, भले वो कुछ भी हो, वो जेल तो उसको दुख देने के लिए है। अब जिस तरह से जेल मनुष्य को दुख देने के लिए, उसी तरह से भगवान, हमारा वास्तविक घर भगवान का धाम है, लेकिन वहां पर हमसे कुछ अपराध हो गया जिसकी वजह से हमें इस संसार में यानी जेल में भेज दिया गया, और उसके विषय में कहा गया पदम पदम यत् विपदा, हर एक कदम पर आपको विपदा दी जाती है, दुख दिया जाता है। इस संसार की जेलर के विषय में बताया था मैंने आपको, सुप्रिटेंडेंट कौन है, दुर्गा जी, उनका डिपार्टमेंट ये है कि आपको दुख प्रोवाइड करे। तो दुख इस संसार में, और किधर किधर दिखेंगे आपको, सर्वत्र दुखम पश्येत, आप जिधर भी नजर घुमा कर देखो, अपने फ्रंट पे देखो, ईस्ट में देखो, वेस्ट में देखो, बैक में देखो, आपको दुख ही दुख नजर आएंगे, क्योंकि भगवान ने यह संसार बनाया ही दुख देने के लिए। लेकिन भगवान क्योंकि अति कृपालु हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। अब देखो जिस तरह से बच्चे को बंद कर देते ना, जैसे एक रूम में अगर आपने कोई मिस्टेक, हम बोलते ना अगर तुमने ये गलती की ना मैं तुमको कमरे में बंद कर दूंगा, खाना भी नहीं दूंगा। लेकिन है ना इसी तरह से भगवान ने भी हमें संसार में भेज दिया, हमने कोई गलती की हमारे कर्मों के अनुसार भेज दिया। अब इसके बारे में मत पूछना कि कौन सी गलती की, इस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा, हमने पहले ही गीता कोर्स में है ना इस पर बहुत सारा डिस्कस किया है। अब मेन क्या है कि भेज दिया है, अब कुछ ऐसा करें कि वापस से अपने रियल धाम में जा सके, ये होती है अकलमंद बात। क्यों आए, कैसे आए, किसने भेजा, मेरी गलती थी या किसी की थी, भगवान ने भेजा है। अब सिचुएशन क्या है, आप जेल में हो, आपको क्या करना है, निकलना कैसे, तो शास्त्र कहता है संसार सागर गुई तत इच्छामि यो नर। अब इस संसार जो कि सागर है, कौन सा, दुखों का सागर है, वहां पर आकर कोई मनुष्य यदि एक ऐसी इच्छा करता है, कौन सी इच्छा करता है कि मुझे इस सागर से निकलना है, हर कोई इच्छा भी नहीं करता, हैरत की बात है कि हर कोई इच्छा ही नहीं करता कि मुझे इस संसार सागर से निकलना है। सब लोग क्या सोचते हैं, कैसे मैं इस संसार सागर में सुखी रह सकूं, दुखों बड़ा सागर है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कितने, पदम पदम यद् विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, हर कदम पर दुख है, हर साइड पर दुख नजर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि इस दुखों भरे संसार में ही मैं सुखी हो जाऊं, हर कोई इसी स्ट्रगल में लगा, बेवकूफ है, भगवान ने रखा ही नहीं, भगवान ने साफ साफ कह दिया यहाँ पर तो मैंने सुख नहीं रखा है। सुख के लिए तो आपको, क्योंकि इस जगत का नाम रखा भगवान ने कुंठा, कुंठा मतलब जहां पर आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, और आपको अगर इन कष्टों का निवारण चाहिए तो उस संसार में रहकर नहीं मिलेगा, आपको वैकुंठ में जाना पड़ेगा। वै मतलब जिधर नहीं हो, कुंठ मतलब जिधर तकलीफ है, दुख क्लेश और इत्यादि ना हो, जहां पर केवल सुख ही सुख हो, यानी कुंठा जगत से हमें कहां जाना पड़ेगा, वैकुंठ में। देखो अगर कोई दलदल में गिर जाता है तो और ये सोचता है कि इसी दलदल में रहकर मैं कैसे सुखी हो जाऊं, तो वो बेवकूफ है ना। उसको सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। और दलदल से बाहर पता है कब निकल सकते हैं, जब किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी चीज का सहारा ले जो उस दलदल से बाहर हो। अंदर जो दलदल में पहले से गिरे हुए वो आपको नहीं बचा सकते, वहां से निकलने के लिए आपको एक स्वच्छ जो दलदल से ऊपर हो, दलदल से बाहर, जो दलदल से निकलने का तरीका जानता हो वही आपको बाहर निकाल सकता। तो कहते हैं संसार सागर गुई तत इच्छामि यो नर, जो यहाँ पर आकर ऐसी इच्छा करता है कि मुझे यहाँ से निकलना है तो क्या करना है इसको, गीता नाव समारह्यम, उसको श्रीमद भगवत गीता को नाव बनाकर उसके अंदर सवार हो जाना है। श्रीमद भगवत गीता की, जैसे अब ये संसार दुखों का सागर है तो श्रीमद भगवत गीता रूपी नाव के अंदर सवार होकर, यानी जब हम श्रीमद भगवत गीता के वचन अमृत को ग्रहण करेंगे फिर क्या होगा, पारम भवती सुखे नच, आसानी से इस महासागर जो कि दुखों से भरा हुआ है उसको हम लांग जाएंगे और अपने रियल जगह जहाँ पर हमारा घर है वहां पर पहुंच जाएंगे। परम सौभाग्य है हमारा कि हम इस दुखों रूपी समुद्र को पार करने के लिए अब श्रीमद् भगवत गीता को के नाव में सवार होने वाले हैं। तो आज हमने पहले अभी तक चैप्टर नंबर 1 के 8 श्लोक पढ़ चुके हैं जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि सेना में वहां पर युद्ध के मैदान में क्या क्या हो रहा है। पहले तो दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर उसके जो उन्होंने गलतियां की उसको इंगित किया और उसके बाद बताया कि उनकी सेना में यानी पांडवों की सेना में कौन कौन है, उनके मुख्य वीरों के विषय में बताया। और फिर उसके बाद हम श्लोक नंबर 7 से दुर्योधन ने अपनी सेना के विषय में बताया। आज श्लोक नंबर 8 में दुर्योधन कह रहे हैं, दुर्योधन किसको कह रहे हैं, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं, और संजय किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। हमारे पास यह श्लोक संजय के श्लोक काउंट होते हैं, संजय उवाच, संजय ने धृतराष्ट्र को यह सब बताया है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 9, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहराः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य का क्या मतलब होता है, अन्य में ना, देखो अभी कल पहले क्या बताया है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च, तो ये नाम बताए ना कि भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, भूरीश्वरा। अक्सर है ना बहुत सारे लोग आप सब में जब बताया है श्लोक तो भूरीश्रवा शब्द सही नहीं उच्चारण किया है, ये ऐसे है भूरीश्रवा, कैसे, सोमदत्त के पुत्र भूरीश्रवा, सही है भूरीश्रवा। हाँ तो ये है, और इसकी अतिरिक्त यानी अन्य बताया गया ना, मानी ये तो हो गए, अब इसके अतिरिक्त भी है बहवः शूरा, अन्य मतलब और अन्य सब, बह मतलब बहवः मतलब अनेक हैं। अब मैं किस किस के नाम बताऊं, और भी बहुत सारे हैं, शूरा यानी वीर हैं, और वो क्या उनका लक्ष्य क्या है, मदर्थे, मद मतलब मेरे, कौन बोल रहा है, दुर्योधन बोल रहा है, मेरे लिए, अर्थे मतलब मेरे लिए, त्यक्त्व त्यागने के लिए तैयार है, जीविता अपने जीवन, अपने यानी यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन का सत्य उत्सर्ग करने वाले, यानी कि आपको मैं किस किस के नाम बताऊं, हमारी सेना में तो इतने ज्यादा शूर हैं, इतने ज्यादा वीर हैं जो कि मेरे लिए अपने प्राण अपनी जान की बाजी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उसके बाद बताते हैं नाना, नाना का मतलब होता है अनेक, नाना शस्त्र, शस्त्र मतलब आयुध, विपंस, हथियार, प्रहरणा, प्रह
रण, प्रहरण का मतलब होता है से युक्त, उन्होंने पहने हुए या उन्होंने धारण किए हुए हैं, उन्होंने सुसज्जित लिखा हुआ है कि उनसे लेस हैं, जैसे ऐसे बोलता है ना, हथियारों से लेस हैं। और एक तो उनमें तीन क्वालिटीज बताई, एक तो वो अपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार है, दूसरा वो बहुत सारे शस्त्र धारण किए हुए हैं, और तीसरे नंबर पे बताया सर्वे युद्ध विशारदा। सर्वे मतलब सारे, सभी कौन, जितने भी मेरे साइड के लोग हैं सभी, सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध कला में एकदम एक्सपर्ट है, यानी कि हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो पहले जो कल नाम बताए कि ये सारे तो वैसे ही कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो हारे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मेरी सेना में बहुत सारे ऐसे वीर हैं जो कि मेरे लिए अपने जीवन का परित्याग करने के लिए तैयार हैं, उनके पास बहुत अच्छे से हथियार हैं और वो हमेशा युद्ध में एकदम एक्सपर्ट हैं। तो मेरे साथ साथ श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। फिर से, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवताः, सॉरी जीवता नहीं है जीविता है, सही, वापस से, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। वन लास्ट, सब पढ़िए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक् जीविताः, नानाशस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदाः। अनुवाद, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जहां तक अन्यों का यथा, अब अन्य कौन है वो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जयद्रथ है। जयद्रथ कौन है पता है? दुर्योधन की एक सिस्टर थी, बहन थी दुश्याला, उसके पति थे जयद्रथ, और उसके अतिरिक्त कृतवर्मा है तथा शल्य का संबंध है। वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। इन्होंने बोला ना, ये सब अन्य च बहवः शूरा मदर थे त्यक्त जीवता, मेरे लिए तो क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैं अधर्म हूँ, अधर्म के साथ जो भी जुड़ेगा उसका सर्वनाश होने वाला है, अधर्मी के साथ जो भी जुड़ेगा उसका सर्वनाश डेफिनेटली होने वाला है, इसीलिए बोल दिया पहले से ही। अन्य च बहवः शूरा मदर थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे युद्ध विशारदा। कि आप ना जान लो कि भले उसने कितने भी शस्त्र उठा लिए हो, कितना ही युद्ध में निपुण क्यों न हो, मदर थे त्यक्त जीविता, बेचारे मारे जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया है। यानी कि श्रीमद् भाजी इस श्लोक को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि मरेगा बेचारा जो अधर्म का साथ देगा वो, तो पूर्व निश्चित, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं पूर्व निश्चित है, पहले से डिसाइडेड है कि मैच फिक्स है कि धर्म की जीत होने वाली है। तो पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। बोले ईश्वर प्रभुपाद जी बोले वास्तविक बात क्या है कि वो मारे जाएंगे, लेकिन वो बोल ऐसे रहा है कि ना वो अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन मुझे नहीं हारने देंगे, लेकिन क्योंकि उसने धर्म का साथ, उन सब ने अधर्म का साथ दिया है तो मारे जाएंगे। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 10, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षतं बलं भीमाभिरक्षितिं तम। आप इसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है ना वर्ड लिखा हुआ है भीमा भी रक्षितम, रक्षितम लिखा हुआ है, ठीक है। और शुरू में क्या लिखा हुआ है भीष्मा भी रक्षितम, यानी कि भीष्मा भी रक्षितम का क्या मतलब है कि उनकी सेना जो है वो भीष्म, सॉरी हमारी सेना जो है ना वो भीष्म की, भीष्म देव की निगरानी में सुरक्षित है, और जो पांडवों की सेना है वो भीम की ना संरक्षण में है। तो उन दोनों में भी अगर डिफरेंस किया जाए तो भीष्म पितामह और भीम का कोई है ना मेल नहीं। भीष्म पितामह के विषय में तो हम बहुत कुछ पढ़ के अभी भी इसमें भी श्री प्रभुपाद जी काफी बताएंगे कि इनका कोई मेल ही नहीं है। भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा, सबसे बड़ी बात कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, मरेंगे ही नहीं, तो फिर है ना। और भीम है उस तरह, भीम भी कम नहीं है किसी का, किसी से, क्योंकि 100 हाथियों का बल था उसके अंदर। तो ये बहुत ही सुंदर जो है ना दुर्योधन बता रहे हैं अपने गुरु महाराज को अपर्याप्तम, अपर्याप्त मतलब अपरिमेय, यानी कि बिल्कुल सीमित, सॉरी अपर्याप्तम मतलब सीमा ही नहीं है। तदस्मकम, तत् मतलब वह, अस्माकम यानी हमारी, बलम यानी शक्ति, भीष्मा यानी भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम, अभिरक्षितम मतलब बली भांति संरक्षित में है, बहुत अच्छी तरह से हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं कौन, भीष्म पितामह। और जिस सेना की रखवाली रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं उसको कोई डर की जरूरत ही नहीं है। और आगे बताया पर्याप्तम, पर्याप्तम का मतलब होता है सीमित है, क्योंकि भीष्म पितामह की शक्ति असीम है और भीम के विषय में बता रहे हैं कि पर्याप्तम त्विदम एतेषां, त्विदम यानी कि लेकिन, लेकिन कब कहा जाता है कि हम तो बहुत ज्यादा मतलब हमारे युद्ध जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ है जिनकी पराजय पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब लेकिन, लेकिन उनकी साइड के जो युद्ध है, जो टीम है ना उसके अंदर भीष्म पितामह जैसा कोई भी रखवाला नहीं है, वो तो भीम के लिमिटेड है, उसकी शक्ति उसके अंडर कंट्रोल में है। तो त्रिदम यानी यह सब, एतेषां, एतेषां मतलब ये सब जो पांडव हैं, बलम शक्ति भीमा अभिरक्षितम, भीम के द्वारा अभिरक्षित हैं। यानी कि अब श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। आप इसे अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमा भीराक्षितम्। वापस से,
अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्मा भीराक्षितम्। पर्याप्तम् त्विदमेतेषाम् बलम् भीमा भीराक्षितम्।
अनुवाद, हमारी सेना, हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी अनलिमिटेड है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अब यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है कि भीम जो है उसकी शक्ति सीमित है, लेकिन भीष्म पितामह की शक्ति है ना असीम है, तो फिर हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो भीष्म पितामह तो हमारे साथ है। वास्तव में भक्तों, भीष्म पितामह की शक्ति वाकई में असीम थी। वो इतना मतलब जिस सेना के साथ भीष्म पितामह है उसके साथ तो है ना विजयी है होनी होती है, लेकिन है ना नहीं हुई विजय। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने अधर्म का साथ दिया था। शक्तिमान चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, यदि वो अधर्म का साथ देगा तो निश्चित रूप से उसे हारना पड़ेगा, पराजित होना पड़ेगा। वास्तव में भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा त्यागी थे, कल हमने उनके जीवन चरित्र के विषय में पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक गलती की। जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना, मैंने आपको प्रतिज्ञा बताई थी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, जब उनके पिताश्री ने उनको यह वरदान दिया कि आप अपनी इच्छा से मरोगे, जब तक आप इच्छा करोगे तभी आपके प्राण, तो उनको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं सदैव, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी अब कि मैं जब तक के नाम नहीं मरूं। अच्छा देखो, जब उन्होंने पहली वाली प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, और जो भी इस हस्तनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसकी सहायता करूंगा, उसका साइड लूंगा। ये कितनी बेवकूफी की बात है कि जो भी आया मुझे उसकी सहायता करनी पड़। उसको क्या कहना चाहिए था कि अगर कोई भी आएगा, अगर वो धर्म पे होगा तो मैं उसका साथ दूंगा, अगर अधर्मी होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं सेनापति में भले पहले से ही बोल देना चाहिए था। देखिए, यहाँ से हमें सीख मिलती है, इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे धर्म जो है, अधर्म जो है, वो कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, उसके साथ भीष्म हो, द्रोण हो, द्रोणाचार्य हो, चाहे इतने सारे कौरव और बहुत सारे, यहाँ तक कि भगवान की नारायणी सेना क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्म है तो उसकी पराजय निश्चित है। तो भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा ले ली कि जो भी कौरव के सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसका साथ दूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी की थी उन्होंने। सबसे इनको ऐसे कहना चाहिए था, अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई बैठेगा और वो धर्म के अनुसार युद्ध करेगा ना शासन, तो उसका साथ दूंगा, वरना मैं उसका साथ नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा रॉन्ग ले ली। अब इससे हमें सीखना चाहिए कि इस तरह की प्रतिज्ञा लेने से हमारा ही विनाश होगा, तो फिर सारी जिंदगी इस प्रतिज्ञा का बोझ उठाते रहे वो, और अपनी इस गलती की वजह से उन्हें भगवान से शत्रुता करनी पड़ी, कि भगवान के विरुद्ध होकर उन्हें युद्ध करना पड़ा। और एटलीस्ट क्या हुआ, उनकी इतनी अपरिमेय यानी इतनी असीम शक्ति, इतनी असीम पावर के बावजूद भी उन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया, यानी कंपेयर किया ना दोनों के अंदर, दोनों सेनाओं के अंदर कंपेयर करके बताया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारे हथियार हो, सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, यानी कि वो सोचता है कि एक तो उनका सेना नायक भीष्म पितामह वो बहुत ज्यादा अनुभवी है, युद्ध में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत सारी जंगें जीती हैं, और दूसरा हमारी सेना जो है वो बहुत सारे उनके पास हथियार भी हैं, और जो जैसे बताया पहले हमें 9 वाले श्लोक में, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवता और नाना शस्त्र परहणा सर्वे युद्ध विशारदा, के उनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं और वो युद्ध में बहुत निपुण हैं और मेरे लिए अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, ऊपर से भीष्म पितामह जैसा सेना नायक, तो ये बहुत ही हमारे लिए इनफ है जीतने के लिए, ये सब काफी है। और आगे बताया, अब दूसरी ओर क्या था पांडवों की तरफ, दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, यानी कि लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम के द्वारा की जा रही है। अब भीम इतना ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं था ना जितना कि वो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, उन्होंने बहुत सारा जंगें की थी, लेकिन भीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था युद्ध का, तो बोला कम अनुभवी भीम के द्वारा की जा रही थी, जो भीष्म की तुलना में निगरणीय था, मतलब काउंटलेस, उसकी तो कोई गिनती नहीं आती, भीष्म और कहां भीम, इनमें तो कोई है ही नहीं। देखो यहाँ पर कितना अच्छा लिखा है, अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्, के इनमें तो कोई कंपेरर नहीं है, कोई कंपटीशन किया ही नहीं जा सकता, कहां भीष्म पितामह और कहां भीम। अभी आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा होगी, यानी कि उसको ये पता था पहले से किस तरह से कि उसकी मृत्यु का कारण भीम बनेगा, और वो एक उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था बचपन से ही, भीम जो है ना, भीम की और दुर्योधन की नहीं बनती थी, इसलिए अभी जिससे नहीं बनती है ना, जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके बारे में बोलना होता ना, इसे इसके पास कहाँ पावर है, ये कोई जिताएगा, तो ऐसे वो बोल रहा है, इसलिए कि इनकी सेना तो भीम है ना, भीम के पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये क्या इनकी सेना को जिताएगा, इस तरह बता रहा है वो। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, लेकिन भीष्म पितामह की, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह उसका साथ दे रहे हैं तो फिर उसकी जीत जरूरी है, और भीष्म पितामह साथ दे रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से उसका साथ देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि जिस टाइम पर उसने अधर्म किया था, द्रौपदी को बड़ी सभा में नग्न करने का विचार किया था, उस टाइम पर भीष्म पितामह वहां पर बैठे हुए थे, वह अधर्म को रोक सकते थे, अगर उनकी शक्ति अपरिमेय थी वो कर सकते थे, दुर्योधन को मार सकते थे या पकड़ सकते थे या मना कर सकते थे या किसी तरह से भी वो चीज रोक सकते थे, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं बोला, यानी कि वहीं से उनका अपराध स्टार्ट हो गया था। तो अब दुर्योधन को ये विश्वास था कि वो बचाएगा मुझे, विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था, यानी कि भीष्म पितामह के पास बहुत ज्यादा पावर है और बहुत अच्छे सेनापति हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो डेफिनेटली भीष्म, और भीष्म जिस साइड पर है वही साइड पर क्या होगा, विजयी होगी, ये तो दुर्योधन का मत है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं यहाँ पर बता दूं, इस अभी का नहीं है, वह श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक है 78, और वहां पर लिखा हुआ है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर विजयो भूत्वा दुर्वानीतिर्मतिर्मम, के वास्तविक शास्त्र क्या कहता है कि जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहां पर धनुर्धर अर्जुन होंगे वहीं पर विजय होगी, चाहे दूसरी सेना में चाहे कितने ही अनुभवी लोग हों, कितने ही अना दुर्योधन के हथियारों से लेस जितनी ही सेना हो, लेकिन जहां कृष्ण है, जहां धर्म है, वहीं पर विजय होती है, चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी विजय कभी नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, हरि बोल।